एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम बात करें कि ऐसी किताब की जो सच में हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, हेनरी बर्गसन की क्रिएटिव एवोल्यूशन।
बिल्कुल, और ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी भी है ना। हम एआई की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये सवाल उठता ही है।
हाँ, कि क्या जीवन बस एक तरह का कोड है, एक मशीन,
या सब कुछ पहले से तय है? बर्गसन हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाते हैं। वो जीवन की क्रिएटिविटी, उसकी जो अप्रत्याशित उड़ान है, उस पर जोर देते हैं।
और इस अनोखे नज़रिए को समझने के लिए मुझे लगता है पहले हेनरी बर्गसन को थोड़ा जानना ज़रूरी है। 1859 से 1941 तक फ्रांस के बहुत ही, क्या कहते हैं, प्रभावशाली दार्शनिक थे।
और दिलचस्प बात ये कि उन्हें 1927 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।
हाँ, उनके विचारों की गहराई और उन्हें जिस तरह से उन्होंने पेश किया उस कला के लिए।
उनकी पृष्ठभूमि भी बड़ी अनोखी थी। पहले गणित और विज्ञान पढ़ा, फिर फिलॉसफी में आए।
सही, ये कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है। एक साइंटिफिक दिमाग जो दर्शन के गहरे सवालों से जूझ रहा है।
शायद इसीलिए वो विज्ञान को, खासकर डार्विन के विकासवाद को, एक बिल्कुल नई दार्शनिक नजर से देख पाए।
सही कहा, वो सिर्फ बायोलॉजी के फैक्ट्स इकट्ठा नहीं कर रहे थे, उनका सवाल था कि हम इन फैक्ट्स को समझते कैसे हैं। क्या हमारी बुद्धि, हमारा सोचने का तरीका जीवन की असलियत को, उसके प्रवाह को पकड़ने के लिए काफी है? उन्होंने ड्यूरेशन पर पहले ही काम किया था, मतलब समय का जो असल अनुभव है।
हाँ, वो घड़ी वाला टाइम नहीं।
बिल्कुल, और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान पर भी। और यही विचार क्रिएटिव एवोल्यूशन की बुनियाद बने।
तो ये किताब क्रिएटिव एवोल्यूशन, जो 1907 में आई, इसे विकासवाद पर कोई कमेंट्री नहीं है। ये तो जीवन के मतलब पर, उसकी दिशा पर, और हम उसे कैसे समझते हैं, इस पर एक गहरा विचार है।
हाँ, ये पूछती है जीवन आखिर है क्या चीज, क्या बस नियमों का खेल है या कुछ और भी है इसमें।
तो उन्होंने शुरुआत कैसे की, मतलब मौजूदा विचारों को चुनौती कैसे दी?
हाँ, तो उस वक्त दो मेन आइडियाज थे विकास को समझने के। पहला था मैकेनिज्म, मतलब यांत्रिकता,
कि सब कुछ मशीन जैसा है, भौतिक रासायनिक नियम।
बिल्कुल, कारण कार्य के नियम से सब बंधा हुआ, जीवन एक जटिल मशीन मात्र है।
और दूसरा?
दूसरा था फाइनलिज्म या अंतिमवाद, टेलियोलॉजी जिसे कहते हैं।
अच्छा, कि जीवन का कोई पहले से तय लक्ष्य है, एक मंजिल।
हाँ, जैसे कोई कहानी पहले से लिखी हो और सब उसी तरफ बढ़ रहे हो। बर्गसन ने कहा, देखो ये दोनों ही बातें पूरी तरह सही नहीं है, अधूरे हैं ये नजरिए।
कैसे?
मतलब जीवन पूरी तरह मशीन जैसा प्रिडिक्टेबल भी नहीं है।
हाँ, और नहीं किसी तयशुदा स्क्रिप्ट पर चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत रैंडमनेस, बहुत विविधता दिखती है।
तो फिर क्या है अगर ये दोनों नहीं? तो यहीं पर वो अपना सबसे क्रांतिकारी विचार लाते हैं, इलान विटाल।
इलान विटाल, ये फ्रेंच शब्द है।
हाँ,
इसका मतलब क्या हुआ?
जीवन शक्ति।
हाँ,
कह सकते हैं जीवन शक्ति, पर ये कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है।
अच्छा,
बर्गसन के लिए ये जीवन के अंदर ही मौजूद एक बुनियादी रचनात्मक आवेग है, एक जोर है, एक इम्पल्स,
एक क्रिएटिव फोर्स।
बिल्कुल, जो लगातार नई चीजें बना रहा है, पदार्थ के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, नए नए अप्रत्याशित रास्ते बना रहा है।
जैसे कोई नदी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, किसी नक्शे के हिसाब से नहीं चलती।
क्या बढ़िया उपमा दी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये जीवन का एक तरह से कलाकार वाला पहलू है।
तो जीवन सिर्फ चांस या किसी पहले से बने प्लान का नतीजा नहीं, बल्कि एक एक चलती हुई रचनात्मक प्रक्रिया है।
एग्जैक्टली, सतत रचनात्मक प्रक्रिया, और इसी विचार के इर्द गिर्द ये पूरी किताब बुनी गई है।
चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। पहले अध्याय में वो क्या कहते हैं, क्यों ये मैकेनिज्म और फाइनलिज्म काफी नहीं है?
वो बहुत ठोस उदाहरण देते हैं, जैसे उन्होंने आंख का उदाहरण लिया, हमारी आंख या किसी भी रीढ़ वाले जीव की आंख।
हाँ, वो तो बहुत जटिल होती है,
है ना? इतनी जटिल, इतनी सटीक। बर्गसन का तर्क था कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि हजारों छोटे छोटे रैंडम बदलाव
बिना किसी प्लान के,
हाँ, संयोग से जुड़ते गए और इतनी परफेक्ट चीज बन गई। स्टैटिस्टिकली ये लगभग नामुमकिन लगता है। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब आप देखते हैं कि मोलस्क जैसे जीवों में, जो हमसे बिल्कुल अलग हैं,
हाँ,
उनमें भी स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग विकास के रास्ते पर चलकर वैसी ही जटिल आंख विकसित हुई है।
अरे वाह,
मतलब अलग अलग रास्ते से एक ही जैसी जटिल चीज बन गई।
हाँ,
तो इसे सिर्फ संयोग या एक मशीनी प्रक्रिया से कैसे समझाएंगे?
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये किसी अंदरूनी निर्देश या
हाँ, लेकिन वो आवेग किसी तयशुदा प्लान जैसा नहीं, क्योंकि अगर प्लान होता तो विकास इतना बेतरतीब क्यों होता? इतने अलग अलग प्रयोग क्यों दिखते हैं?
सही कहा, बहुत सी चीजें तो बनी और फिर खत्म हो गईं। विफलताएं भी तो हैं।
बिल्कुल, जीवन तो कई अलग अलग दिशाओं में फूटता नजर आता है। इसीलिए बक्सन ने कहा कि ये एक आवेग है, एक एलॉन विटाल, जो दिशा तो देता है पर मंजिल तय नहीं करता। ये संभावनाओं को खोलता है, रास्ता बनाता है।
अच्छा, तो ये एलॉन विटाल या जीवन शक्ति, ये खुद को अलग अलग तरीकों से प्रकट करती है। इसके अलग अलग रूप हैं।
बक्सन के अनुसार हाँ, वो कहते हैं कि ये जीवन शक्ति समय के साथ अलग अलग रास्तों पर बट गई, जैसे एक पेड़ का तना आगे जाकर शाखाओं में बट जाता है।
कौन कौन से रास्ते?
उन्होंने तीन मुख्य दिशाएं या प्रवृत्तियां बताईं। पहली है जड़ता, टॉर्पर। ये हमें पौधों में दिखती है।
पौधों में कैसे?
उन्होंने ऊर्जा जमा करने में, फोटोसिंथेसिस में महारत हासिल कर ली, लेकिन चेतना और गतिशीलता वो लगभग खो बैठे, एक तरह से स्थिर हो गए।
अच्छा,
और दूसरी दिशा?
दूसरी है प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट।
ये हमें कीड़ों मकोड़ों में, खासकर जो सामाजिक कीड़े हैं जैसे चींटियां, मधुमक्खियां, उनमें दिखती हैं।
हाँ, उनमें तो कमाल का ऑर्गेनाइजेशन होता है
ना? प्रवृत्ति जन्मजात होती है, एकदम सटीक, अपने काम में परफेक्ट। वो ततैया का उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो जो कैटरपिलर को डंक मारती है।
हाँ, ठीक सही जगह पर डंक मारकर उसे लकवा ग्रस्त कर देती है, मारती नहीं, ताकि उसके लार्वा को ताजा खाना मिले। ये ज्ञान अद्भुत है, पर ये एक तरह से फिक्स्ड है, अनम्य है।
मतलब ततैया ये सोच नहीं सकती कि आज कुछ नया ट्राई करूं, वो बस वही करती है जो उसकी प्रवृत्ति में है।
बिल्कुल, ये एक परफेक्ट पर ऑटोमेटिक ज्ञान जैसा है।
और तीसरी दिशा क्या है?
तीसरी दिशा है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये कशेरुकी जीवों में और खासकर हम इंसानों में सबसे ज्यादा विकसित हुई।
अच्छा, बुद्धि की क्या खासियत है?
इसका लचीलापन, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, और सबसे जरूरी औजार बनाना और इस्तेमाल करना।
हाँ, ये तो है।
प्रवृत्ति अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करती है, बुद्धि शरीर से बाहर के औजार बनाती है।
बिल्कुल सही।
तो ये बुद्धि और प्रवृत्ति, ये एलॉन विटाल के दो अलग अलग रास्ते हैं, दुनिया में सफल होने के दो अलग अलग तरीके।
और ये सिर्फ कम या ज्यादा का फर्क नहीं है, मतलब इंसान ज्यादा बुद्धिमान है, कीड़ा कम, ऐसे नहीं।
बर्गसन कहते हैं नहीं, ये सिर्फ मात्रा का नहीं, प्रकार का फर्क है, क्वालिटी अलग है। बुद्धि विश्लेषण करती है, चीजों को तोड़कर देखती है।
हाँ,
जबकि प्रवृत्ति चीजों को एक साथ समग्र रूप से बिना विश्लेषण के जानती है।
तो इंसान में क्या है? दोनों?
हाँ, इंसान में दोनों हैं, लेकिन हमारा विकास, हमारी सभ्यता बुद्धि की तरफ ज्यादा झुकी है। पर बर्गसन यहीं एक और बड़ा सवाल उठाते हैं।
क्या?
कि क्या हमारी ये बुद्धि, जो चीजों को तोड़ने, विश्लेषण करने और औजार बनाने में इतनी माहिर है, क्या वो जीवन के असल प्रवाह को, उसकी समग्रता को, उसके बनने के एहसास को समझ सकती है?
अच्छा, यहीं पर शायद वो ड्यूरेशन और इंट्यूशन वाले आइडिया आते हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था।
बिल्कुल, बक्सन पूछते हैं, हमारी बुद्धि समय को कैसे नापती है?
घड़ी से, सेकंड, मिनट, घंटे, अलग अलग टुकड़े।
हाँ, अलग अलग पल जिन्हें हम जोड़ते हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन का अनुभव ऐसा होता है, टुकड़ों में? जब हम कोई संगीत सुनते हैं तो क्या हम अलग अलग नोट सुनते हैं या एक बहती हुई धुन?
नहीं, वो तो एक पूरी धुन होती है, एक एहसास होता है जिसमें पिछला सुर अगले से जुड़ा होता है।
ठीक यही है बक्सन का ड्यूरेशन, वास्तविक जिया गया समय। ये घड़ी का क्वांटिटेटिव समय नहीं, बल्कि ये क्वालिटेटिव सतत अविभाज्य प्रवाह है,
जिसमें अतीत मरता नहीं।
हाँ, वो वर्तमान में मौजूद रहता है, उसे रंग देता है और भविष्य को आकार देता है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, सब इस प्रवाह का हिस्सा है। लेकिन हमारी बुद्धि, जो सॉलिड चीजों से डील करने के लिए बनी है, वो इस बहते हुए समय को पकड़ने के लिए स्ट्रगल करती है, वो उसे टुकड़ों में तोड़ देती है।
और यहीं पर वो सिनेमैटोग्राफिक मैकेनिज्म वाला उदाहरण फिट होता है।
हाँ, उनका बहुत फेमस मेटाफर है ये, जैसे पुराना फिल्म प्रोजेक्टर। वो असल में क्या करता है?
वो अलग अलग स्थिर तस्वीरों, फ्रेम्स को तेजी से दिखाता है।
बिल्कुल, वास्तविकता के निरंतर प्रवाह को स्थिर स्नैपशॉट्स में तोड़ता है और फिर उन्हें तेजी से चलाकर गति का भ्रम पैदा करता है। बक्सन कहते हैं हमारी बुद्धि भी कुछ ऐसा ही करती है।
अच्छा, कैसे?
वो जीवन के निरंतर प्रवाह को स्थिर कॉन्सेप्ट्स, विचारों, क्षणों में तोड़ देती है, फिर उन्हें लॉजिकली जोड़ के समझने की कोशिश करती है। ये प्रैक्टिकल कामों के लिए, दुनिया में एक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी और उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन
ये जीवन के वास्तविक अविभाज्य प्रवाह को, उस ड्यूरेशन को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाती। वो इसकी एक सरलीकृत स्थानिक तस्वीर बनाती है।
तो फिर अगर बुद्धि की ये सीमा है, तो फिर जीवन के इस असली प्रवाह को, इस ड्यूरेशन को, इस अलान विचाल की धड़कन को कैसे समझें? कोई तरीका है?
वर्गसन कहते हैं हाँ है, और वो है अंतर्ज्ञान,
इंट्यूशन।
ये तो थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, गट फीलिंग।
नहीं, बर्गसन के लिए ये कोई रहस्यमयी छठी इंद्री नहीं है, ये एक तरह की बौद्धिक सहानुभूति है। मतलब चीज का विश्लेषण करने के बजाय उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करना, उसके साथ एक हो जाना,
विश्लेषण से परे जाकर सीधा अनुभव करना।
हाँ, ये हमें जीवन की उस धारा में वापस ले जाती है जिससे बुद्धि हमें थोड़ा बाहर निकाल देती है। ये हमें उसके रचनात्मक सार को सीधे महसूस करने का मौका देती है। ये बुद्धि का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है।
यानी हमें लॉजिक और एनालिसिस के साथ साथ इस डायरेक्ट होलिस्टिक समझ पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका हुआ।
हाँ, और बर्गसन मानते थे कि फिलॉसफी का असली काम यही है, अंतर्ज्ञान को डेवलप करना, हमारी चेतना का दायरा बढ़ाना, ताकि हम उस रचनात्मक जीवन शक्ति से, उस इलान विटाल से फिर से जुड़ सकें जिससे हम निकले हैं।
मतलब विज्ञान बताएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं,
और दर्शन हमें समझने में मदद करेगा कि चीजों के होने का अर्थ क्या है, उनका सार क्या है।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
सबसे पहला तो यही इलान विटाल का आइडिया, जीवन सिर्फ नियमों का पालन करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव क्रिएटिव फोर्स है, लगातार कुछ नया रच रहा है,
अप्रत्याशित है। जैसे हमारे अंदर कोई नया आइडिया आ जाता है अचानक, या कोई कलाकार कुछ बिल्कुल हटके बना देता है, वो शायद इसी इलान विटाल का प्रकटीकरण है।
बिल्कुल। दूसरा, ये समझना कि जीवन ना तो पूरी तरह मशीन है, ना ही पूरी तरह स्क्रिप्टेड ड्रामा, ये बीच का रास्ता है, एक दिशा है, एक आवेग है, पर मंजिल पहले से तय नहीं है, वो रास्ते में बनती है।
ये शायद हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अनिश्चितता को स्वीकार करने में मदद कर सकता है ना। हम प्लान बनाते हैं, पर ये भी जानते हैं कि चीजें बदल सकती हैं।
सही कहा। तीसरा, ड्यूरेशन का वो गहरा विचार, समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, वो एक जीता जागता क्वालिटेटिव प्रवाह है। हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ है, हमारे वर्तमान को रंग दे रहा है।
जैसे कोई पुरानी धुन सुनकर अचानक सालों पुरानी यादें और भावनाएं ताजा हो जाती हैं।
बिल्कुल। चौथा, बुद्धि और प्रवृत्ति, ये चेतना के दो अलग अलग लेकिन वैध तरीके हैं, दोनों की अपनी ताकत है, अपनी सीमाएं हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं। कोई लॉजिक में अच्छा है, तो किसी का इंट्यूशन तेज है, किसी का प्रैक्टिकल स्किल कमाल का है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
और पांचवा, हमारी बुद्धि की सीमाओं को पहचानना, ये एक बेहतरीन औजार है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह सब कुछ समझने के लिए नहीं बना है। कभी कभी हमें अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन पर भी भरोसा करना होता है,
खासकर जब मामले बहुत जटिल हों और सिर्फ डेटा या लॉजिक से बात ना बन रही हो।
हाँ, बर्गसन की लिखने की शैली भी कमाल की है, कुछ बातें तो सीधे दिल में उतर जाती हैं।
हाँ, कुछ कोट्स याद आ रहे हैं।
बिल्कुल। जैसे ये, अस्तित्व में होना बदलना है, बदलना परिपक्व होना है, परिपक्व होना स्वयं को अंतहीन रूप से बनाते रहना है।
वाह, मतलब जीवन कोई बनी बनाई चीज नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है खुद को बनाते रहने की।
हाँ, एक मंजिल नहीं, एक सफर। या फिर ये पंक्ति जो थोड़ी चौंका सकती है, बुद्धि की विशेषता जीवन को समझने में एक प्राकृतिक अक्षमता है।
ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है।
हाँ, पर वो बुद्धि को कम नहीं आंक रहे, वो बस कह रहे हैं कि बुद्धि का डिजाइन अलग काम के लिए है, जीवन के प्रवाह को, उसकी वाइब्रेंसी को पकड़ने के लिए, उसके साथ बहने के लिए आपको इंट्यूशन की जरूरत पड़ेगी।
और वो एलन विटाल वाला विचार,
हाँ,
जीवन का आवेग सृजन की आवश्यकता में निहित है, यह इस पदार्थ को पकड़ता है, और इसमें अनिश्चितता और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी संभव मात्रा का परिचय देने का प्रयास करता है।
मतलब जीवन का नेचर ही है क्रिएटिव होना, आजादी खोजना, बंधनों के अंदर भी।
बिल्कुल।
और वो सिनेमा वाला मेटाफर, वास्तविकता बहती है, हम स्नैपशॉट में अनुसरण करते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो समझ है वो अक्सर असलियत का एक टुकड़ों में बटा हुआ स्थिर रूप होती है।
सही। तो इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? इन्हें कैसे लागू करें?
मुझे लगता है एक तो यही कि हम खुद को और दूसरों को सिर्फ लॉजिक या इंटेलिजेंस के पैमाने पर न तौलें। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, ये भी बहुत जरूरी हैं।
हाँ, और शायद थोड़ी अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें। हर चीज का परफेक्ट प्लान बनाने की जिद छोड़ें। कभी कभी प्रवाह के साथ बहना, प्रयोग करना, अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करना।
हाँ, चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो या कोई रिश्ता या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो।
आप सोचिए किसी कलाकार के बारे में जो शायद एक सुरक्षित रास्ता छोड़ लेता है क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ नया बनाना है, या कोई बिजनेसमैन जो सारे डेटा के बावजूद अपनी गट फीलिंग पर एक बड़ा दांव लगाता है।
हाँ, बर्गसन के हिसाब से ये सिर्फ तुक्का नहीं है, ये शायद उसी एलोन विटाल की पुकार है।
बिल्कुल। और प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। वो सिर्फ रिसोर्स नहीं है या नियमों से बंधी मशीन नहीं, वो एक डायनामिक, लगातार बदलती क्रिएटिव प्रक्रिया है और हम उसका हिस्सा हैं।
शायद इससे उसके प्रति हमारा सम्मान और जुड़ाव और गहरा हो सकता है।
कुल मिलाकर बर्गसन की दुनिया एक ठंडी मैकेनिक दुनिया नहीं है, ये एक जीवंत, धड़कती हुई, लगातार खुद को रचती हुई ओपन एंडेड वास्तविकता है। ये ज्यादा उम्मीद भरा नजरिया है।
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही रही कि बुद्धि बहुत जरूरी है पर सब कुछ नहीं। इंट्यूशन को भी जगह देना, उसे सुनना, उसे डेवलप करना जरूरी है। और वो ड्यूरेशन का आइडिया, समय को एक गहरे जुड़े हुए प्रवाह की तरह महसूस करना, ये बहुत पावरफुल लगा।
और मुझे वो बुद्धि और प्रवृत्ति का फर्क बहुत दिलचस्प लगा। ये समझना कि चेतना कितने अलग अलग रूपों में काम कर सकती है और हर रूप की अपनी वैल्यू है, ये शायद हमें दूसरों के अलग नजरियों को, अलग तरह की इंटेलिजेंस को ज्यादा समझने और स्वीकार करने में मदद कर सकता है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है ना, अगर जीवन वाकई एक सतत रचनात्मक प्रवाह है जैसा बर्गसन कहते हैं, तो हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने रोज की आदतों और योजनाओं के बीच इस क्रिएटिव फ्लो से दोबारा कैसे जुड़ सकते हैं?
हाँ, उसे महसूस करने और उसमें हिस्सा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो शायद हमें अपने साथ ले जाना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।